ओम शांति। आज ये क्लास कुछ प्रैक्टिकली भी होगी, क्योंकि बाबा का ज्ञान ज्यादातर प्रैक्टिकली है, थ्योरेटिकली नहीं है। तो जैसे बाबा ने कहा है, कल भी बाबा ने एक शब्द यूज किया था धूम के ऊपर, कि बच्चों को इस शरीर रूपी धूम बहुत स्मृति में रहती है। और आज भी बाबा ने एक शब्द पे फोकस किया है कि बच्चे अंत में खूने नाहक खेल होंगे, खूने नाहक खेल की नाहक मृत्युएं होंगी बहुत बेहद में। और कुछ बच्चे, क्या कहा बाबा ने, डरपोक होंगे तो क्या हो जाएंगे, बेहोश हो पड़ेंगे। तो हम सबको तैयार रहना है, क्योंकि हम सबको आदत है। सबसे ज्यादा प्यार हम किसको करते हैं, अपने शरीर से, देह से, धूम से, कपड़ों से। और फिर दूसरे नंबर पे अपने कपड़े को तो करते ही करते हैं, दूसरों के कपड़ों को भी प्यार करते हैं। शरीर रूपी कपड़ा, इन्हीं दो कपड़ों में हम सारा समय गुजारते आए। आदत ऐसी लगी कि उसको छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान को रोज रोज हमें समझाना पड़ रहा है, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम ये देह नहीं हो। एक बात केवल बाबा को समझाने के लिए कितना समय लगा, और हम उस एक बात में अटके हुए हैं। तो इसी के लिए कि हम देह में अटके हुए हैं, देहधारियों में अटके हुए हैं, और मृत्यु का भी भय हमें सबसे ज्यादा होता है ना। बाबा ने कहा था निर्भय बनना है, तो हमें किसका सबसे ज्यादा भय होता है, स्वयं की मृत्यु का। बाबा तो कहता है तुम तो मर चुके हो, ये तुम्हारा मर्जी व जन्म है, तुम मर चुके हो पहले ही देह से। तो हमें डर लगता है अपनी मृत्यु का, और हमारे संबंधियों की मृत्यु का भी भय सताता है ना। निर्भय बने या अभी हम प्रैक्टिकली कोई परिस्थिति आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वयं को सेफ करते हैं, या फिर कोई अपना करीबी होता है उसको सेफ करते हैं, हटो हटो, होता है ना। तो बाबा ने भी कहा योग में, मुरली में कहा कि योग युक्त जो रहेंगे उनको चोट भी नहीं लगेगी। बट अचानक हम आत्मिक स्मृति से सेकंड नहीं लगता देह की स्मृति में आने में, और आत्मिक स्मृति के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो मृत्यु का हमें कितना भय सताता है, तो उसके लिए कविता है, वो मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी की है सुनाता हूं। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृद्धा मरे वृद्धा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। समझ में तो आ ही रहा होगा ना कि मृत्यु से नहीं डरना, ठीक है। और अगर मृत्यु भी नहीं आई तो वृद्ध होकर मरे तो क्या मरे, कि अपने लिए जो जी रहे हैं हम पशु वृत्ति के समान है, जो खुद ही आप ही चरे, अपने लिए जिए, विश्व कल्याण के लिए नहीं जिए। अगली लाइन, रहो न भूल के कभी मदान से तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहां त्रिलोकी नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कि हम क्या है, छोटी सी तुच्छ सोच के सहारे जी रहे होते हैं और उसका हमें बड़ा अहंकार गुमान होता है और उस पर हम अपना गर्व करते हैं। क्योंकि इसमें कहा है कि दयालु दीन बंधु के बहुत बड़े हाथ हैं, भगवान को कहते हैं सर्वशक्तिवान है, अनेकों हाथ हैं उसके। और जो अतीव भाग्यहीन है उसके लिए भी हमें क्या सोचना है, उसके लिए बहुत भाव श्रेष्ठ हो। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। हारे न हेल मेल हां, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पाथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहज समझ आया होगा ना कि कोई भी परिस्थिति आए उसको कैसे धकेलते हुए जाना, बाबा ने कहा उड़ते हुए फार कर लेना है। और तारते हुए मृत्यु कैसे हो, हमारी साधारण नहीं है, हम विशेष हैं। तो मृत्यु भी सांसें भी कैसी निकलें भगवान को प्रत्यक्ष करते हुए, ये तो हमें आदत पड़ी हुई है देहधारियों की। एक प्रैक्टिकल आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, हर पल देहधारी को हम साथ पाना चाहते हैं। ऑफिस में होंगे तो कोई व्यक्ति हमारे साथ वार्तालाप करने वाला हो, ना आए तो हमारा दिल नहीं लगता, इधर उधर जाकर बातें करते हैं। कहीं जाना हो तो भी हमें साथी चाहिए कि हमारे साथ कोई चले। पूरे दिन पे मैसेज अगर किसी का उसका नहीं आएगा तो बेचैन हो जाएंगे, फोन कॉल उसको कितनी बार नहीं कर लेंगे तो बेचैन हो जाएंगे, खाने डाइनिंग पर भी बैठेंगे तो क्या करेंगे, संगठन में लेके चलते हैं कि चलो हम खाना खाने जा रहे हैं। भगवान कह रहा है मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, सर्व संबंधी हूं, फिर भी हम उन्हीं में करने क्या आए थे। बाबा ने क्या कहा था कि बच्चे ये बाह्य जंजीरें, आप मुक्त हो सकते हो बट ये सूक्ष्म सोने की जंजीरें हैं ना, इनसे भी मुक्त होना पड़ेगा, उन पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो एक संकल्प लें आज कि मैं जिससे ज्यादा से ज्यादा बात करता हूं, जिससे ज्यादा मुझे मोह लगाव प्रेम है, जो भगवान की जगह लेना चाह रहा है, एक दिन के लिए उससे उपराम हो जाऊं, एक वीक के लिए उपराम हो जाऊं, एक मंथ के लिए उपराम हो जाऊं, एक साल के लिए उपराम हो जाऊं। क्योंकि ये अभ्यास अभी करना पड़ेगा, अंत में नहीं कर लेंगे, यह हो जाएगा अंत में, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमें उस सारी चीजों का अभ्यास करना है, अभी से करना है। अब मुख्य पॉइंट पे आते हैं, जो पुरुषार्थ था वित्त मास का होमवर्क। पूरा दिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। यही भावना अव्यक्त स्थिति का आधार है। सिक्स पिलर, सिक्स आधार फॉर अव्यक्त स्थिति। ये छह पिलर्स हैं जो हमारी अव्यक्त स्थिति का आधार हैं, कमल फूल समान बनाने के लिए। तो एक एक को लेते हैं। कि शुभ मतलब भावनाएं रखनी है, भावना मतलब उसको कह सकते हैं कि मन के शुभ संकल्प, ख्याल, या इंग्लिश में सेंस स्पिरिट इमोशंस कह सकते हैं। भावनाएं बाबा ने शुभ भावनाओं के लिए कहा है, अशुभ के लिए नहीं, दो प्रकार से हो सकती हैं। शुभ भावनाओं पर बाबा ने फोकस किया है कि कल्याण की भावना, कल्याण का अर्थ होता है सलामती भलाई, और कल्याण शब्द संस्कृत का शब्द है जो कल्याणा शब्द से निकला हुआ है, और ये शाब्दिक अर्थ है, शिव का अर्थ भी कल्याणकारी होता है। तो बाबा अपने स्वरूप जैसा हमें बनने के लिए बोल रहा है। कैसे हूं, कब हम बन सकते हैं कल्याणकारी? ठीक है, और तो इसमें है कि जब स्वयं का कल्याण हो रखा होगा तो दूसरों का करेंगे, पहला। दूसरा, मन बुद्धि हद से बेहद में हो, संकुचित है तो नहीं कर सकते। तीसरा, बाबा का रिगार्ड होगा, क्योंकि बाबा तो कह रहा है रिगार्ड होगा तो हम कल्याणकारी बाप समान बनेंगे। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, स्नेह देने की भावना, स्नेह अर्थात प्रेम भाव, मोहब्बत, लव या अफेक्शन, फ्रेंडशिप। स्नेह बहुत शक्तिशाली होता है और स्नेह में पवित्रता होती है, प्योरिटी। और स्नेह की शक्ति सबसे शक्तियों से पावरफुल क्यों मानी गई है? क्योंकि इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारी लाइफ में होते रहते हैं। कोई बताएगा क्या? ठीक है, वो तो हाँ वो तो है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम आपस में कैसे स्नेह के प्रूफ दिखते हैं तुरंत अचानक? कि जब जब मां बच्चे को याद करती है तो कितना भी दूर बैठा हो आवाज हो जाता है, मां की याद आ गई, फोन आ गया, कॉल आ गया, मैसेज आ गया, किसी को भी बड़े तीव्र मन से हृदय से याद करें तो तुरंत टचिंग होती है, वो पावर तुरंत काम करती है, हिला देती है। हुए ना आप सभी के साथ इस अनुभव हुए होंगे ना, कि बहुत पावरफुल शक्ति है। स्नेह लेने का भाव, हमें स्नेह लेने का भाव तो रहा है तड़ी से जन्मों से, हम क्या चाहते हैं? मुझे प्यार करे कोई, अच्छा समझे, मान दे, है ना? बट देने के लिए हम बाद में होते हैं, पहले मुझे मिले, लेने का भाव नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, बच्चे अगर तुम्हें कोई गाली भी दे तो भी क्या करना है, फूलों की वर्षा करनी है। बट कब करेंगे? जो फूलों का खजाना हमारे पास होगा तभी करेंगे ना, क्योंकि हम सेकंड में, फूल से कांटे बनने में सेकंड ही लगती है। कि हमारे पुराने संस्कार को दूसरी आत्मा तुरंत क्या कर देती है, इमर्ज करा देती है, हमारे अंदर भी वही भाव पैदा हो जाता है कि अच्छा ऐसा बोला। छोटी छोटी बातों पर हम पता नहीं कितने अपनी स्थिति को खराब कर लेते हैं। एक बाबा के समय में एक युगल आए हुए थे, छोटी सी बात पर वो बाबा का यज्ञ छोड़कर चले गए थे, याद है किसी को? रेशमी रुमाल, कहने लगे कि मैं वीआईपीओं से मिलता हूं तो बाबा का नाम रोशन होगा, मैं रेशमी रुमाल यूज करना चाहता हूं। तो वो उन्होंने कहा बहनों ने कि मातेश्वरी जी से पूछना पड़ेगा। तो मम्मा को जब ये सुना कि रुमाल से यज्ञ का नाम रोशन करेंगे तो मम्मा ने मना कर दिया, बच्चे ये रुमाल नहीं। तो उनको उस छोटी सी बात को इतना गहराई में उतार लिया, यज्ञ को छोड़कर दोनों ही चले गए। छोटी बातें कब कितनी गहरी हमारे अंदर उतर जाएं हमें नहीं पता। तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह के लिए हमें एक तो कब दे पाएंगे, जब हमें एक तो लक्ष्य याद होगा, हम ये चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, लक्ष्य के कारण चल रहे हैं। कुछ हमारा पॉजिटिव स्वार्थ है ना, तभी चल रहे हैं। या फिर देना नहीं लेना है, तब हम स्नेह दे सकते हैं। क्योंकि बाबा ने भी हम बच्चों को किससे चलाया, स्नेह की पावर से। बाबा स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल थे। बाबा स्नेह के द्वारा हमें शक्तिशाली बनाते थे। स्नेह देकर क्या करते थे बाबा, हमें अंदर से शक्तिशाली बनाते थे। और शक्तिशाली बनाकर नष्टो मोहा भव कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया था बाबा ने हमें स्नेह के आधार से। कितनी भी नाराजगी हो जाती बच्चों की तो बाबा कोशिश करते उसको कैसे ना कैसे युक्ति युक्त होकर उसको राजी कर साथ चलाया। बाबा ने एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाया कि ऐसी आत्माएं हो। तो अगली शक्ति है, अगला स्तंभ है टावर सहयोग की। सहयोग की भावना, सहयोग क्या एक शक्ति है, अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है। तो सहयोग कौन कर सकता है, उदार चित होगा। सहयोग कई प्रकार से होता है। एक सहयोग होता है स्वार्थ बस, एक होता है निस्वार्थ बस, होता है ना, अलग अलग होता है। और बाबा ने भी कहा है मुरलियों में, बच्चे बिना पूछे करे सो देवता, कहने पर करे सो मनुष्य, और कहने के बाद भी ना करे छोड़ दो। कैसे कैसे शब्द बाबा ने यूज किए ना। तो इसीलिए सर्वस्व सहयोग बाबा ने संपूर्ण अपने कर्मों से दिखाया। क्या दिखाया, जो कर्म मैं करूंगा वो मुझे देखकर सर्व करेंगे। बाबा ने सबसे पहले क्या किया, खुद किया, खुद सहयोग दिया, दिया ना, सबसे आगे रहे। तब बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन श्वास संकल्प, तीन चीजें बाबा ने मुख्य रूप से दी। सबसे पहले तन, तन दे दिया, तन के साथ मन भी आ गया, बुद्धि श्वास संकल्प सब आ गया। फिर दूसरा धन दिया, स्थूल धन जो भी था सब यज्ञ में लगा दिया एक सेकंड में। तीसरा इस देह के सर्व संबंधियों को एक बाप में रला दिया, सबसे ममत्व मिटा दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन गए। और दूसरी चीज क्या होता है, बाबा ने ये भी कहा है कि कुछ लोग सहयोग तो कर देते हैं बट भाव पैदा हो जाता है मैंने दिया, मैंपन। फिर बाबा स्वीकार करता होगा नहीं, वो लोग भी जानते हैं कि नेकी कर दरिया में ढाल। उन्हें भी ज्ञान था इस बात का कि अगर किसी के लिए अच्छाई कर रहे हैं, अगर उसका गुणगान कर रहे हैं तो वो आपका नहीं लगेगा। तो जितना हम सहयोग करेंगे, सहयोग की शक्ति का दान देंगे, बाबा ने कहा का कि जिस चीज की कमी है उसका दान दो, वो बढ़ेगी। अगली स्तंभ है चौथा, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। क्या है, हिम्मत उल्लास। हिम्मत का अर्थ होता है कि हिम्मत, साहस। उल्लास मतलब उमंग या खुशी। कैसे बढ़ेगा हिम्मत, उल्लास कैसे बढ़ाएं? उमंग सेवा में तुम और स्वयं उमंग में रहेंगे, दूसरों को भी उमंग आएगा। आधी रत्नों का अनुभव, बहुत अच्छे। और निश्चय यहां पर बताया है कि बाबा की सर्विस में रहेंगे तो भी उमंग उत्साह बढ़ेगा, बढ़ता है ना। हमारे भी अनुभव है कि हम जैसे बस में गए थे, बाबा की बस निकली हुई है स्वर्णिम भारत मेरा भारत, 15 दिन के लिए बाबा ने हमें भी भाग्यशाली रहे हम मौका दिया। तो जहां जहां पर बस जाती थी तो वहां वहां के भाई बहन उमंग उत्साह से भर जाते थे, प्रोग्रामों की लिस्ट बनाते थे और सारा के सारे भाई बहन को एक एक वर्क मिल जाता था। आप यहां लेके जाएंगे इतने सारे कॉलेज टू और अच्छे अच्छे प्रोग्राम के लिए, मतलब एक बस आई तो सब लोगों में उमंग भर जाता था। सब भाग दौड़ प्रोग्राम ये वो, पहले शांत बैठे थे बट देखा बस आ रही है तो सब में क्या हो जाता था, उमंग उत्साह जुनून। तो सेवा उमंग उत्साह देती है, उड़ाती रहती है। दूसरा, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का संग भी तो उमंग लाता है ना। आप यहां तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आते हैं तो उमंग उत्साह बढ़ता है। दूसरा, दादियों के अनुभव सुनना, बाबा के समय में दादियों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया, उससे भी बढ़ता है। अगली चीज, मंथन करने से भी उमंग उत्साह बढ़ता है। योग भट्टियां करने से भी उमंग उत्साह, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और मधुवन नहाने से भी उमंग उत्साह बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो वो ये कि हिम्मत उल्लास का जब हम एक कदम रखेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारे पास स्वतः ही हम भरपूर रहेंगे हिम्मत से, उल्लास से। अगला टावर्स है, पिलर्स है, अपनेपन की भावना। कैसे आएगी अपनेपन की भावना? बाबा ने भी अपनेपन का स्वरूप कैसे दिखाया कि बाबा के पास जो भी आत्मा आती थी, बाबा बच्चे से बच्चा बनकर बात करते थे, युवा से युवा बनकर बात करते थे, बूढ़ों से अपने हमजिंस समझकर उसने उन्हें स्नेह का अनुभव कराते थे कि एक बार जो बाबा से मिल ले, वो आत्मा यही अंदर से कहती थी, बाबा मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या अनुभव करती थी कि बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इतना अपनेपन का अनुभव कराते थे बाबा कि हमें जब स्मृति रहेगी अपनी, बाबा को स्मृति रहती नहीं, मैं प्रजा का पिता हूं, तो जब हमें भी स्मृति रहेगी कि हम एक पिता की संतान है, हम पूर्वज हैं, हम बड़े हैं इस कल्प के, तो हम सबको स्नेह देंगे, प्यार देंगे, अपनापन देंगे। और दूसरा, एक बाबा की मुझे भी वो चीजें प्रैक्टिकल में तुरंत याद आता है कि जब बाबा बच्चों को, तब सुना भी होगा आपने कि बाबा अपने हाथों से खिलाते थे, तो क्या स्मृति से खिलाते थे? चैतन्य ठाकुरों को भोग लगा रहा हूं, तड़ेसठ जन्म पत्थर की मूर्तियों को चढ़ाया, इतने स्नेह से खिलाया, ये चैतन्य मेरे सामने है, इतने बाबा भाव से विभोर होकर कि मेरे चैतन्य ठाकुर है, इनको भोग स्वीकार करा रहा हूं, इतने जन्मों के बाद ये मौका आया है। और वो अनुभूति बच्चों को होती थी। लास्ट स्तंभ आत्मिक स्वरूप की भावना। कैसे होगी आत्मिक स्वरूप की भावना? बोलना तो बहुत सहज है, बट होगी कैसे? वैराग्य, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, जैसे वैराग्य। आत्मिक स्वरूप की भावना के लिए कोई कितनी भी कठोर आत्मा आ जाए, आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाए, ये कुछ उल्टे कर्म कर रही हो आपके सामने, कैसे संकल्प रुक जाएंगे? कुछ ना कुछ तो चल जाता है ना, सुबह सुबह कुछ ना कुछ चलने लगता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमें उसके अनादि गुणों की स्मृति नहीं है, उसके संपन्न स्वरूप की भावना इमर्ज होगी। हम उसके उस समय को नहीं देखना है, उसके अनादि जो परम धाम में संपन्न स्वरूप है उसको देखना है, तब वो भावना जागरूक होगी। अगर उसी समय उसी स्थिति को देखेंगे तो आत्मिक स्वरूप की भावना नहीं जागरूक होगी। क्या देखना है? उसका अनादि स्वरूप को देखना है, आत्मिक स्वरूप को देखना है। और जब ये भावनाएं हमारे जीवन में आने लगेंगी तो धीरे 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 वो हमारा नेचुरल संस्कार बनने लगेगा। सारी भावनाएं नेचुरल होने लगेंगी तब हम संपन्न अव्यक्त फरिश्ता स्थिति की ओर स्टेबलाइज हो जाएंगे। क्योंकि बाबा भी जैसे जैसे कर्मातीत स्थिति की ओर समीप आए, विस्तार को सार में सुनने लगे, सुनते सुनते अपराम होने लगे। होते थे ना बच्चों को भी उनकी अव्यक्त स्थिति का आभास होने लगा, उनको खुद ही बोलते बोलते वो पुराम होने लगते थे। बाबा के कमरे में शांति का सन्नाटा छाया रहता था अंतिम समय में। तो अगर हमें अव्यक्त स्थिति में संपन्न बनना है तो हमें ये सिक्स पिलर, सिक्स भावनाएं करनी है। आगे एक थोड़ी सी अटपटी बातें हैं, वो थोड़ी आपको एक प्रैक्टिकली चीज से समझाने की कोशिश कर रही है। ये सब भावनाएं, गुण, शक्तियां हमारे अंदर हैं, बस स्मृति रूपी कंबल और अभ्यास रूपी चक्र लगाएंगे तो बुढ़िया के भाल बन के तैयार हो जाएंगे। समझ में नहीं आया होगा ना, समझाएंगे। सपोज करो ये कंबल गर्मी दे रहा है, ये गर्मी हमारे अंदर है, कंबल थोड़ी गर्मी दे रहा है, हमारे अंदर की हीट को, ऊर्जा को ये केवल रोकता है। ऊर्जा हमारे अंदर है बट ये बाहर बिखरने से रोकता है। तो शक्तियां हमारे अंदर हैं, स्मृति रूपी कम्बल उसको स्मृति में लाना है, ओढ़ना है, और अभ्यास रूपी चक्कर, कौन सा चक्कर, बार बार रिपीटेशन करना है। 108 बाबा ने अभी भी मुरलियों में कहा था जो बाबा आए थे, परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग करो बच्चे, स्वयमानों की सीट पर स्थित हो जाओ, स्वयमानों का अभ्यास करो बच्चे कि मैं फरिश्ता हूं, मैं लाइट हूं, मैं ये हूं, मैं वो सोचते हैं हम, अभ्यास तो करते हैं, होते क्यों नहीं है, बनते क्यों नहीं है, क्वेश्चन आया, क्योंकि हम कर रहे होते हैं, बट हम करके प्रैक्टिकली में उसको देखें ना कि बाबा बोल रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे बुढ़िया के बाल सभी ने खाए ना बचपन में, याद आया होगा, इसमें क्या चीज होती है, तीन चीजें होती है ना, एक तो अग्नि, अग्नि होती है ना, अग्नि, और फिर चीनी डालते हो, फिर मशीन चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगा के छोड़ दें तो बुढ़िया के बाल बन जाएंगे, आनंद लेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, मैं कहते थे तो जादू हो रहा, पता नहीं कहां से क्या बन रहा है। तो जितनी ज्यादा हम स्वयमानों का अभ्यास करेंगे, जैसे वो बन के तैयार हो जाता है ना, लाल सफेद ओरा बन जाता ना चारों ओर चक्कर से बना, जितना ज्यादा हम स्मृति में रखकर उन स्वयमानों का अभ्यास करेंगे हमारा ओरा बनेगा। हम एक दो बार स्वयमान का अभ्यास किया, दो चार बार किया करके बस फारिक हो गए, हाँ मैं तो फरिश्ता बन गया, बन गए नहीं ना। और अभ्यास भी दो लेवल पर होता है, एक मन और एक अंतर्मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, चेतन अवचेतन मन, दो लेवल पे होता है। हम किस लेवल का स्मृति में है डिपेंड उस पे भी करेगा। साइंस भी मानती है कि सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट पावरफुल कॉन्शियस कंपेयर्ड टू कॉन्शियस माइंड। हम केवल कॉन्शियस माइंड की स्मृति से भी अभ्यास करेंगे तो वो ओरा नहीं बनेगा उतना पावरफुल, उसे पहले अंतर जगत को स्वीकार कराना पड़ेगा कि मैं फरिश्ता हूं, अपने अंतर को सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज दिलाना पड़ेगा कि मैं हूं, तब अभ्यास करेंगे तो जल्दी हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। तुम किस लेवल पर अभ्यास कर रहे हैं ये भी हम पर डिपेंड करता है। तो हमें अपनी हर एक चीज को चेक करना है। ये मार्ग बहुत प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है कि मुरली पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, सुनना पढ़ना देखना जानना और स्वीकार करना फर्क है। कि मैंने मुरली पढ़ी तो मैंने अपने लिए आज कौन सी चीज स्वीकार करी जो मेरे अंतर मन को टच किया, कि आज से मैं उसे प्रैक्टिकली लाऊंगा। ये निर्भर नहीं करता कि कोई 5 साल से ज्ञान में है, ये निर्भर करता है कि उसने मुरली से अपने अंदर कितना भरा है, उसे स्वरूप में कितना लाया है। अगर बाबा का पति स्नेह पाना चाहते हो तो मेरे अपना अनुभव है, मुरली से कोई भी पॉइंट प्रैक्टिकल में कर दो उसी दिन, तो आपको बाबा का बहुत असीम स्नेह मिलेगा। तो जब स्नेह मिलता है तो शुक्रिया निकलता है ना बाबा के लिए, या नहीं निकलता। शुक्रिया के भी टाइप्स हैं, है ना बाबा? शुक्रिया बाबा, लाख लाख शुक्रिया बाबा, पदम पदम शुक्रिया।
और इससे ऊपर
मैं कैसे करता हूँ शुक्रिया, बताएं? प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करने से है ना। क्यों? क्योंकि जब लोग कहते हैं कितना प्यार करते तो लोग हाथ को फैलाते हैं ना। मैंने कहा तो आधा सर्किल बना, पीछे का तो रह गया ना। मैं हाथ करके सर्किल घूमता हूं, बाबा इतना प्यार, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। बाबा मैं तुम्हें महासंख प्यार करता हूं, महासंख शुक्रिया बाबा, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। बाबा अनंत शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया भी परिस्थितियों के अनुसार निकलता है, निकलता है ना, या एक सा निकलता है हमेशा। ये सब प्रैक्टिकल अनुभव है। तो लास्ट में एक लाइन बोलूंगा बाबा के लिए, इतना दिया मेरे खुदा ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया मेरे बाबा ने जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो रहमत है उस प्यारे मीठे बाबा की, वरना मुझ में तो ऐसी कोई खास बात ही नहीं, वरना मुझ में तो ऐसी कोई खास बात ही नहीं। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र पे आने का हसकों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद पे आने की भीतर तो जारी है, याद पे आने की भीतर तो जारी है। ओम शांति।